संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे। 185वां कलश चलाएंगे। संस्कृत में पढ़ो बेटा, 185वां कलश शार्दूल में क्रीड़ित है। प्रकरण चलेगा अगली गाथाओं से 301 से। अंत में वो निर्देश देते हैं, सिद्धांतोर उदार चित्त तरती मोक्षार्थ भी सेव्यता। उदार चित्त तरतई, उदार है चरित्र जिनका, ऐसे महापुरुष लोग एक इस सिद्धांत का सेवन करें। सिद्धांत लिखा ना, इस सिद्धांत का सेवन करें। वो कौन सा सिद्धांत है जिसका सेवन करने के लिए वो बात कर रहे हैं? तो शुद्ध चिन्मय एकमेव परमम ज्योति, शुद्ध चिन्मय एकमात्र ज्ञान ज्योति रूप ही मैं हूं। ये सिद्धांत है। अगर एक ही सिद्धांत है कि मैं तो शुद्ध चिन्मय मात्र ज्योति स्वरूप हूं, इस सिद्धांत को जिनका चरित्र उदार है ऐसे सज्जन लोग निरंतर सेवन करें। तो ऊपर की पंक्ति है ना और नीचे की पंक्ति दो इस श्लोक में। नीचे का जो छंद अपन ने पद्यानुवाद किया जो पलट दिया है, ऊपर की पंक्ति को नीचे ले लिया है और नीचे की पंक्ति को ऊपर। मैंने सिद्धांत पहले बता दिया है और बाद में ये बात कही है कि हमें इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए, और ऊपर श्लोक में सिद्धांत बाद में बताया है और पहले ये कहा है कि हमें इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। क्या लगा? मैं तो सदा ही शुद्ध परमा नंद चिन्मय ज्योति हूँ, कि मैं तो निरंतर परमानंद स्वरूप चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। इस सिद्धांत को क्या सेवन करें? सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधिजन, सब मुमुक्षु बंधुओं को एकमात्र इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। सिद्धांत जैसा तो कुछ लगता नहीं, अपन तो सुनते हैं हमारा अहिंसा साधवाद अनेकांत है ना, ये सिद्धांत लगते हैं हमें। और आपके जो ये सिद्धांत है तो सिद्धांत किसे कहते हैं? ये सिद्धांत शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी असली व्याख्या क्या है? सिद्ध हैं अंत में जिनके उन्हें बोलते हैं सिद्धांत। कारण सिद्ध चक्र विधान है तो सिद्धांत है वो। गोमर सारादि ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है ना, तो जिनने भी जीव कांड और कर्म कांड गोमर सार के शास्त्र पढ़े हैं उनने यदि एक बात पर ध्यान दिया हो तो जरा सोचें कि हर अध्याय के अंत में सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया है। हर अध्याय को वे सिद्धों में जाके अंत करते हैं, तो सिद्धों में जाकर जो कहानी अंत हो उसका नाम है सिद्धांत। अब जानते हैं जिस नाटक लिखे जाते थे पहले अथवा आज लिखे जाते हैं अथवा सिनेमा की कोई फिल्म हो तो वो दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। ये तो समझते होंगे आप, एक सुखांत और एक दुखांत। जिस कहानी का अंत दुख में हो वो ट्रेजेडी है और जिस कहानी का अंत सुख में हो वो कॉमेडी। ये मानते क्या नहीं मानते, विदेशों में सबसे पहले ट्रेजेडी लिखी गई, खासकर शेक्सपियर वगैरह ने जो उनके नाटक हैं बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं वो अंत में ट्रेजेडी माने जो नायक नायिका हैं बस मिलते नहीं हैं, रोते रोते मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लैला मजनू जैसी कहानी वो ट्रेजेडी है, समझ गए आप। और पहले बहुत संघर्ष होता है लेकिन अंत में सीता और राम मिल जाते हैं तो वो कॉमेडी है। सुखांत और दुखांत, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। हिंदुस्तान के जो आचार्य हुए हैं, कौन से आचार्य, अपने जैनियों के आचार्य नहीं, कुंदाचार्य नहीं। कल तो मैंने एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात बताई थी आपको, और ये आचार्य हैं नाट्य शास्त्र के आचार्य, सबसे पुराने 2000 वर्ष पहले कुंद के समय में एक भरत मुनि थे जो इन्होंने महाकाव्य कैसा होना चाहिए, नाटक कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों को लिखा है। फिर बहुत आचार्य हुए हैं, कुंतल फलाना मलाना, समझे ना, 2000 वर्ष में कई पंथ चले हैं उनमें भी। तो भरत मुनि ने सबसे पहले 2000 वर्ष पहले ये लिख दिया कि भारतीय संस्कृति में सब नाटक कोई भी कहानी वो सुखांत ही होती है, हम दुखांत नहीं करेंगे। क्योंकि घर से आदमी मनोरंजन करने के लिए जाता है, दुख तो 24 घंटा घर में ही कम है क्या, दिन भर रोना तो घर में ही होता रहता है। अब 3 घंटे को गया है पैसा खर्च करके सिनेमा में देखने के नाटक देखने, तो थोड़ी शांति के लिए गया है पर वहां भी जाके बैठ के रोई रोए क्यों, और उसमें से निकले तो रोता रोता निकले तो क्या फायदा है। इसलिए कम से कम ये सुखांत तो होना चाहिए, ये नियम बना दिया। इसलिए भारतीय जितनी भी कहानियां होंगी वो सब सुखांत तो होंगी। अब सिनेमा में उसका क्या रूप हो गया है, ये बम्बैया फिल्में जितनी भी बनती हैं उन सब फिल्मों की कहानी मैं आपको 1 मिनट में सुना सकता हूं, सुननी है। 2 लड़के और 1 लड़की, अगर बीच में धमाधम धमाधम दोनों से एक लड़की पे रींझ रहे हैं, है ना, एक हीरो एक खलनायक, क्या बोलते हैं उसे, विलेन, और धमाधम अंत में कई दफे विलेन हीरो को पीटता है, हीरो विलेन को पीटता है, पर अंत में विलेन या तो मर जाता है, घायल हो जाता है, सुधर जाता है और हीरो हीरोइन मिल जाती है, या तो ऐसी होगी अथवा 1 लड़का और 2 लड़की समझ गए ना। पर वहां भी ऐसी कहानी चलेगी और अंत में एक किसी तरह खत्म हो जाएगी और दो मिल जाएंगी, बस वो सुखांत हो गई। अब इस सुखांत हुई है क्यों कि दुखांत हुई है। अब सारे दुख तो अभी शुरू होने हैं, यदि इसे कहेंगे तो हम ये कहेंगे भोगांत है, ये तो भोग में अंत हुआ ना। लेकिन सारी दुनिया तो भोग को ही सुख कहती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैन दर्शन की हर कहानी जाकर के मोक्ष में समाप्त होती है, इसलिए वो असली सुखांत है। क्या चाहे राम की कहानी होगी, चाहे किसी की भी होगी, पद्म पुराण होगा, चाहे महावीर पुराण होगा, अंत में भी मोक्ष चले गए और खत्म। तो वो अब जो मोक्षांत है, जिसके अंत में मोक्ष है, अनंत सुख है, तो असली सुखांत कहानियां तो जैन पुराणों में ही प्राप्त होती हैं। ये हमारे आचार्य ऐसे हैं कि कहानी शुरू करेंगे और मर जाए तो अगला भव, अगला भव, अगला भव, और जब तक भव का अंत नहीं हो जाए, मोक्ष में ना पहुंच जाए, फिर द्वारा से दूसरी भव में जाए ही नहीं, तब तक कहानी को खत्म करते ही नहीं है, तो हजार भव हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं आपके? यहाँ तो भैया जीवन से लेके, जन्म से लेके मरण तक ही कहानी होती है, पर अपनी कहानी कोई एक एक जन्म में तो बंधी है नहीं, वो तो अनेक जन्मों तक चलती है ना। हमारे यहाँ तो गीत भी ऐसे बने हैं कि नौ भव की मेरी प्रीति लगी है, है? एक दिन की बात थोड़ी है। मैं पूछता हूँ लोगों से कि छेड़ाला में किसकी कहानी है, सबसे पहले मैं वहां सोलापुर गया था, और सोलापुर में लड़कियों का आश्रम है, सुमति बहन वहां थी, परमश्री सुमति बहन वो चलाती थी, तो उन्होंने मुझे उस आश्रम में बुलाया और सारी लड़कियों को बैठा लिया और फिर कहा कि साहब ये धर्म भी पढ़ती हैं, आपके परीक्षा बोर्ड से परीक्षा देती हैं, तो आप इनसे कोई प्रश्न पूछिए। मैंने कहा क्या पूछ रहा भाई, आप पढ़ाती हैं तो भी पढ़ती ही होंगी अच्छी। नहीं नहीं आप कुछ पूछिए। तो मैंने पूछा कि बेटा छड़ाला पढ़ा? जहां पढ़ा, सबने हाथ उठा दिया कि छड़ाला में किसकी कहानी है, तो सन्नाटा छा गया, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी। एक लड़की ने हाथ उठाया, मैंने बोलो बोलो बेटा, मतलब बताओ। बोले आपने छड़ाला पढ़ी? क्या जवाब दिया उसने? सच्ची घटना है, इन्हें नाम जगह लगा नाम लेके बता रहा हूं। क्या आपने छड़ाला पढ़ी? फिर क्यों? क्या छड़ाला तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कोई कहानी थोड़ी है, वो कोई प्रथमान योग का ग्रंथ थोड़ी है, वो तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कहानी है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शुरू शुरू में दो चार लाइनें पढ़ी थी तो उसमें आया था तास ब्रह्मण की है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा। क्या अर्थ है इसका? तास ब्रह्मण की, उस जीव के घूमने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तास ब्रह्मण की है बहु कथा। तय कछु कहूं, मैं पूरी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कहता हूं। और कही मुनि यथा, जैसे हमारे पुराने मुनिराजों ने कही है, उनके अनुसार थोड़ी कहानी मैं कहता हूं। यही अर्थ है कि हाँ यही अर्थ है। तो मैंने कहा कि जब लेखक प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा उस जीव के घूमने की, और जैसा हमारे आचार्यों ने कही है वैसी, तो मैंने सोचा कि जब हमने प्रतिज्ञा की तो झूठी प्रतिज्ञा तो करते नहीं हमारे लेखक, तो इसमें कोई कहानी होगी क्या? होनी चाहिए ना कोई कहानी के है, किसकी है? मेरी तेरी हम की सब की कहानी है। तो कहां से शुरू होती है वो कहानी? काले अनंत ने गोद मझा बीतो एक प्रियतन धार, वहां से शुरू होती है निगोद से। और निकसी भूमि जल पावक भयो, ये भूमि जल पावक भयो, और निकसी कहां से निकला? निगोद से। निगोद कहां है? कि वनस्पति में, और वनस्पति में भी साधारण वनस्पति में, तो वहां से निकला तो पृथ्वी हुआ, जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, और प्रत्येक वनस्पति हुआ, साधारण वनस्पति को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो निगोद है। कहानी शुरू हुई, फिर आगे बढ़ी। दुर्लभ है लही ज्यो चिंता मणि, यो पर आय लही त्रिशतनी, और लिट पिपीले अली आदि शरीर। फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ना लठ हुआ, चींटी हुआ, भौरा हुआ, चार, फिर पांच इंद्री हुआ, तो असैनी हुआ, फिर सैनी हुआ, तो फिर जितरंज में से निकला, तो फिर वहां से नरक गया, सुरग गया, और अंत में मनुष्य हुआ। कहानी है ना, चल रही है कहानी। फिर अब आगे कहां बढ़े? क्योंकि देवगति वगैरह से तो, नरक गति से तो आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वहां चौथे गुण स्थान से आगे होता ही नहीं, तो मनुष्य गति से ही बढ़ेगी ना। फिर मुनि हुआ, फिर आत्मा में लीन हुआ, और अंत में कहां खत्म हुई? रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परणये, और अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे, जैसे कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हुए हैं। तो कहां से कहानी शुरू हुई? अपने हेडक्वार्टर से, माने निगोद से, अनादि के तो अपन वहीं से है ना। और कहां खत्म हुई? मोक्ष में जाके। तो मोक्ष के अलावा तो कहीं सुख है ही नहीं। तो असली कहानी है तो छेड़ाला में है, और वो मोक्ष में जाके समाप्त होती है। तो सिद्ध है अंत में जिसके, उसे बोलते हैं सिद्धांत। तब सारा प्रथमान योग सिद्धांत हो गया ना, हमारा सार भी सिद्धांत है, क्योंकि ये भी मोक्ष में जाके खत्म करते हैं। तो इसमें ये लिखा है, सिद्धांतो यमुदार चित्त चरितई असेव्यताम, मोक्षार्थ भी सेव्यताम। उदार है चरित्र जिनका, ऐसे मोक्षार्थी माने मोक्षु भाइयों को इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? मैं तो सदा ही शुद्ध परमा नंद चिन्मय ज्योति हूँ, केवल बस 24 घंटा ये सोचना चाहिए। ये नमोकार महामंत्र समझ लो, और जो विविध प्रभाव मुझ में दिखें वे मुझसे पृथक, जो राग द्वेष के भाव मेरे में दिखाई देते हैं ना, वे मैं नहीं हूं, वे तो मेरे से पृथक हैं। क्या? वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूं, क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य हैं। अभी आगे गाथा आएगी, कलश आएगी, तो क्या कहेंगे? कि जो परद्रव्य का अपहरण करता है वो अपराधी है, और वो लोक में दंड को प्राप्त होता है, बोलते ना पर धन का पर द्रव्य माने धन होता है ना, तो पर द्रव्य माने पर धन का अपहरण करता है, चोर होगा डाकू होगा वो जेल जाएगा, और जो अपने धन का व्यवहार करता है वो मोक्ष में जाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये रागादि भाव जो मेरे में पैदा हुए हैं ये मैं नहीं हूं, ये मेरे लिए पर द्रव्य है। देखो कहीं नहीं मिलेगा पर द्रव्य लिखा है इसमें, देखो क्यों कि वास्तव में तो ये अब आत्मा की विकारी पर्याय है ना, लेकिन ये भी कहते पुद्गल है, इनको भी अध्यात्म में पुद्गल कहा जाता है, ये तो मेरे लिए पर द्रव्य है। ऐसे सिद्धांत का सेवन प्रत्येक मुमुक्षु भाई को निरंतर करना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं, कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, क्योंकि यहां स्वस्वामी संबंध का भी निषेध है कि ये सब मेरी स्वामन संपत्ति और मैं इनका स्वामी ऐसा भी नहीं हूं, और जब भी मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है तो मैं इनका कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूं, ऐसा मानोगे चार बातें तब हम मानेंगे कि तुमने ये माना कि ये परद्रव्य हैं और मैं इनसे पृथक आत्मा हूं। हम कहते हैं ये तो ठीक है कि मैं राग द्वेष नहीं हूं, ये भी ठीक है स्त्री पुत्र आदि भी मैं नहीं हूं, लेकिन कर्ता तो मैं ही हूं ना इनका, आखिर मालिक तो मैं ही हूं ना। अब स्त्री पुत्र आदि का मालिक का जमाना गया, लेकिन रुपया पैसा धन संपत्ति के तो मालिक हम बनते ही है नहीं, क्यों बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हमने कमाए हैं, हमने कमाए हैं कि तुमने कमाए हैं कि तुम्हारे संयोग में पुण्य के उदय से आए हैं, बोलो क्यों तुमने कमाए हैं कि तुमको पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं। हम ऐसे जीव को देखते नहीं हैं कि जन्म से ही जो पैदा हुआ तो न माँ को खाने को मिले ना बाप को खाने को मिले ना उसको कहीं ठहरने को जगह, वहां दरिद्री क्यों ऐसी जगह पैदा हुआ एक बच्चा, और एक बच्चा चांदी की चम्मचों में पैदा होता है, सोने के पालने में झूलता है, और सारी सुविधाएं उसको जन्म से ही उपलब्ध रहती है कि नहीं रहती है, बोलिए तो ये अंतर कहां से आया। ये तुमने तो अभी कमाया, श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं ना नौ चक्री नौ में नारायण कोटि शिला का उठावन, अर्ध चक्री नौ में नारायण और कोटि शिला के उठावन हारे, और जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा। क्या जब उनका जन्म हुआ तो एक आदमी ऐसा नहीं था कि वहां ढपली तो क्या है कि घर में एक थाली उठा करके वो ऐसे बजा देते ना, गरीब से गरीब के घर में पैदा होता है कोई बच्चा तो वहां पर भी इतनी वो बजा देते हैं थाली, बड़े बड़े वादे ना बजे तो, लेकिन उनके जन्म के समय में छुप के भागना पड़ा, लेके गए ना जन्म समय नहीं ग्वाले के यहां फले, जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा, कोई नहीं बचे सब यही सब साफ, सारी संपत्ति और सारा सब साफ, बोलो ना लेके आए थे मां के पेट से और ना एक नया पैसा लेके गए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण श्री कृष्ण का जीवन है, बोलो। अगले भव में तो सबका छूट जाता है, अगले भव में हम जाएंगे तो सबका यही छूट जाएगा, लेकिन उनका तो इसी भव में उनके सामने छूट गया, ऐसे पैदा होते वक्त कभी कभी मुझे विचार आता है गंभीरता से, जरा आप लोग सोचना, आपको अटपटा तो लगेगा लेकिन सोचना, श्री कृष्ण के माता पिता को क्या नाम देवकी और वसुदेव, उनके सगे साले ने, माने देवकी के सगे भाई कंस ने, वो जेल में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि किसी ने ये कहा था कि तेरी मृत्यु ये जो है ना वसुदेव और देवकी के बेटे से हाथ होगी। तो उन्होंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं उस बच्चे को बचना ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने जब भी उनके बच्चा होता देवकी के, तो वो तत्काल अपने हाथ से जाकर के और उन्हें जिंदा ही जैसे जमीन में पछाड़ पछाड़ के मार के फेंक देता था। और वो जोड़े से होते थे दो दो, चार दफे डिलीवरी हुई देवकी की और आठ बच्चे को मार के उसने फेंक दिया। और जब नौवें बच्चे हुए श्री कृष्ण, तो इनको उनको पैदा होते ही लोगों ने गायब कर दिया, क्योंकि ये मार डालेगा सब जानते थे। और वहां ले गए उसको और वहां नंदलाल गोपाल ग्वाले के यहां पर उन्हें पालने को दे दिया। तुम बताना मत कहना ही तुम्हारी बच्चा है। ये हालत उनकी जन्म की समय की ये हालत थी। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आता मेरा कि देवकी और वसुदेव इतने ना समझते। कितने कि उन्हें इसीलिए जेल में डाला गया, क्या सुनना कि इनके बच्चों को मार दिया जाएगा। चलो पहली दफे भरोसा नहीं हुआ, वो कहता है, लेकिन जब बच्चों का चेहरा देखेगा कौन मार सकता है अपने सगे भांजों को। दो पैदा हुए और आंख के सामने मार दिया, तो फिर उन्होंने दूसरे बच्चे पैदा ही क्यों किए? फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं अपनाया? आपको अटपटा लग रहा होगा मेरा प्रश्न, क्यों? वो जानते थे पैदा होंगे बच्चे तो ये मार डालेगा हमारी आंख के सामने, तो उनको फिर द्वारा बच्चा पैदा करने का भाव कैसे हुआ? उन्हें ये बात ख्याल में नहीं आई। चलो सोचा होगा कि एक मार दिया अब द्वारा, फिर द्वारा दोबारा चार चार दफे, फिर भी समझ में नहीं आई, फिर पांचवी दफे। ये हमारे आज के लोग भी छोके छोकरे छोकरियां यही कितनी समझदार हो गई हैं। क्यों नहीं करते ना? यानी उनकी समझदारी में मुझे थोड़ा शक होता है कि साहब उनकी होना ही हार ऐसी थी। वो तो ठीक है ठीक है, लेकिन उनको विवेक तो ऐसा रखना चाहिए था। कुछ जेल में पड़े हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, क्यों दूसरे के भरोसे दो रोटियां खाते हैं? तो उन्हें ऐसा भोग भोगने का भाव ही क्यों आया? आपको नहीं प्रश्न खड़ा होता है? ये मेरे जैसे पागलों को ही खड़े होते हैं इसमें। अब उससे भी ज्यादा कि जाने दो, वो तो उनने जो कुछ किया सो किया, लेकिन वो कंस कितना बेवकूफ था, कोई समझदार आदमी नहीं था उसकी मिनिस्ट्री में। अरे मेरे को ही रख लेता, उसे इतना समझाया कि बेवकूफ जब तूने इन्हें जेल में डाला है तो एक ही कमरे में रखने की क्या जरूरत है? जैसे महिलाओं को अलग जेल में और पुरुषों को अलग जेल में रखते हैं, तो उन्हें अलग अलग जेल में रख देता। क्यों? तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता, बच्चे पैदा ही नहीं होते, किसी को मारने का सवाल ही था। इतनी मोटी बात उसकी भी समझ में नहीं आई। इतना मूर्ख आज कोई दिखता है इस जगत में तुम्हें? बहुत कठिन बात है जी, सोचने में ही डर लगता है, कहना तो बहुत बड़ी बात है, हथेली पे जान लेकर के क्या कह सकते हैं ये बात। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे दिमाग में ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, तो मैं तो प्रश्न पैदा करता हूं आपसे, जवाब मांग रहा हूं। यदि आपको आता हो तो बताओ। और मैं क्या यही सोचो कि आज तक ये कहानी हमने सुनी थी और इतने बरस निकल गए, किसी के 25, किसी के 50, किसी के 75, ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा क्यों नहीं हुआ कि उन्हें लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे और हम वो कंस मारे जा रहा। लेकिन बात अंत में तो यही कहेंगे कि भाई क्रमबद्ध में ही ऐसा था, ऐसे ही होनहार थी, इसलिए उनको ऐसी बुद्धि नहीं आई। लेकिन ये कोई दोनों काम समझदारी के काम दिखाई नहीं देते हैं, ये बात 100% करता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई बच्चे को पुण्य के उदय से ही, जन्म से ही राष्ट्रीय थर्ड वार्ड में पैदा होता है, और कोई महादरिद्रता में पैदा होता है। और श्री कृष्ण एक ऐसे हैं कि महादरिद्रता में पैदा हुए और बीच में अर्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए, और जो लेके आए थे जाते समय भी वो याद में रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी एक घोड़ा चोरी करके लाया, घोड़ी लाए, अब उसे बेचना था, उसे तो बाजार में खड़ा था पशुओं के बाजार में कि घोड़ी बिक जाए। तो वो जो भी ग्राहक आता तो मान लो वो घोड़ी 5,000 की थी, लेकिन वो समझता वो तो अनाड़ी आदमी था ना, चोर, वो क्या जाने घोड़े की कीमत, तो 25,000 मांगे। तो कोई 5,000 की घोड़ी के 25,000 कौन देगा? तो सुबह से शाम तक बैठा रहा और वो घोड़ी नहीं बिकी। लेकिन एक बदमाश आदमी आया और उसने सोचा कि ये घोड़ी इसके बाप की तो है नहीं, यदि होती तो घोड़ी की कीमत जरूर जानता, 5 के 25 नहीं मानता, ये तो कुछ गड़बड़ मामला है क्या। तो उसने कहा कि भाई साहब घोड़ी कितने में दी? कि 25,000 में। कि तेरे को मैं 25,000 दूंगा, लेकिन एक दफे इसकी चाल तो देख लूं। कि भैया जरूर देख लो। तो घोड़ी में बैठा और लगाम अपने हाथ में ली चाल देखने के लिए, और उसके हाथ में एक सड़ा नारियल था। तो उससे बोला, भैया ये जरा रखना तुम संभाल के, मैं अभी घोड़ी को घुमा के लाता हूँ ना, तो ले जाऊंगा अपना नारियल और तेरे पैसा दे दूंगा, घोड़ी ले जाऊंगा। तो घोड़ी पर एंड मारी, वो तो घुड़सवार था, तो एकदम उड़ा के ले गया और फिर कहीं दिखा ही नहीं, लौट के आया ही नहीं, भाग गया। अब एक वो सड़ा नारियल हाथ ले लिए। अब लोग पूछे कि भैया बिक गई घोड़ी? के हाँ बिक गई। कि कितने में बिकी? कि जितने में आई थी उतने में ही बिक गई, मुनाफा में ना, मुनाफा में नारियल। ऐसे ही श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ, क्यों? जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो इतना ही सा है कि उनका 2-4 साल पहले ऐसा हो गया, और हमारा और आपका, हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन हमारा जरा जन्म के थोड़े पहले से ही वो पुण्य आ जाता है और अंत तक रहता है, अगले भव में जाते हैं, जब जाता है क्यों यहाँ रह जाता है, इतना ही फर्क है ना। लेकिन स्थिति तो सबकी ही यही है ना। तो मैं जो कल आपसे थोड़ी चर्चा की थी कि पुण्य पाप के बारे में, ये सारे संयोग हमें पुण्य पाप पुण्य से मिलते हैं ऐसा हमको भ्रम है। और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि ये जो कुछ भी तुम्हें पुण्य पाप के उदय से मिला है ना, ये सारे संयोग ये तुमसे भिन्न है, तुम नहीं हो। क्या बोलता हूँ? ये पुण्य पाप से मिले सारे संयोग, तो आप ध्यान ही नहीं देते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप तो पुण्य से मिले मानते हो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा सब पुण्य से मिले ऐसा मानते हो, है ना? अब मैं बोलता हूँ पुण्य पाप से मिले, तो आप मेरे शब्दों का ध्यान नहीं देते कि मैं पुण्य पाप से कह रहा हूँ। एक आदमी का ध्यान कहा, बार बार आप पुण्य पाप क्या बोलते हो, ये सब चीजें तो पुण्य से ही मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर जाति कैसे है? बोलो कि पाप के उदय से चली जाती है। अरे ऐसा नहीं है, पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, ध्यान से सुनना, और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। दोनों से मिलते ही मिलते हैं, जाता किसी से नहीं। क्यों? सीता जैसी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिली है, मिलती है, तो सुपर्णखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से ही मिलेगी। क्यों? बराबर सब तरह से अनुकूल, सुबह से लेकर शाम तक आपके सब तरह से सेवा में तत्पर ऐसी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो निरंतर कलह कारिणी एक दिन शांति से घर में नहीं रहने दे, ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी बरैया जी की। अब फिर तुम मुझे भटका रहे हो, ये कह रहे बरैया जी की कहानी सुना दो। सुनी होगी आप लोगों ने, बहुतों ने सुनी होगी, है ना? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जगत में जो अनुकूल पत्नी अनुकूल पुत्र हैं, जैसे राम जैसे बेटे दशरथ को यदि पुण्य के उदय से मिले तो औरंगजेब जैसा बेटा भी क्या हैं? उसके शाहजहां को पुण्य के उदय से मिला होगा? बोलो आप विचार कर। अरे उस मुसलमान के पास क्यों जाते हो? अपने सैनिक को कुणिक जैसा बेटा जिन्होंने उनको जेल में डाल दिया था अंतिम, और कैसी मौत हुई, ये भी पुण्य के उदय से मिला होगा, सभी पुण्य के उदय से। और देखो जिस पैसे से आपको निरंतर पूरी अनुकूलता प्राप्त होती है वो पैसा पुण्य के उदय से मिला, लेकिन जिसके मिलते ही डाकू की निगाह खोटी हो जाए, इनकम टैक्स वाले की खोटी हो जाए, चारों तरफ से धारे पड़ने लग जाएं, क्यों? मैं पूछा हर्षद मेहता को एक करोड़ों रुपया पुण्य के उदय से मिले होंगे कि जिंदगी वजह से अंतिम 20 साल जेल में काटने पड़े, वो कैसी हालत में मरा? बोलो। तो ये सारी संपत्ति पुण्य के उदय से मिलती है, रुपया पैसा ये तुमने कहां से सोच लिया? उदय की कुछ भी बात हो, लेकिन इतना तो तुम मानते हो कि पुण्य से नहीं मिलते, अन्यथा इसको कमाने के लिए तुम पाप क्यों करते? ये दुकान खोलना, वहां जाना, झूठ मूठ बोलना, नेम कसम किसी भाव आया है, बिल देखना, ये सब पुण्य की बातें हैं क्या पाप की? है? और थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर करना ही पड़ता है। ये सारे परिणाम आपके पुण्य के हैं क्या पाप के? यदि आपको सच्चा भरोसा है कि पुण्य से मिलता है तो क्यों ये हमारे पाप भाव हमारे जीवन में होते हैं? बोलो। तो हमारे मन में तो यही श्रद्धा है कि पाप से ही मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ईमानदारी से पैसा किया आज तक कोई को मिला है? पैसा मिलता है तो बेईमानी से ही मिलता है। कौन कहते हैं? बोलो आप तो बताओ। गुण भद्राचार्य आज से 1000 वर्ष पहले आत्मानुशासन में क्या लिखते हैं कपूजन जी? शुद्धई धनई विवर्धन्ते न सतामपि संपदा। शुद्ध धन से तो सज्जनों के यहां भी संपत्ति नहीं बढ़ती। कैसे? कि समुद्र कभी निर्मल जल से नहीं भरते, बिस्लरी के पानी से समुद्र नहीं भरते। मतलब तो गंदा मंदा नदियों का यहां वहां से जितनी गंदगी होती है उस गंदे पानी से ही समुद्र भरता है, ऐसा गुण भद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में लिखा है। तो सबकी श्रद्धा कैसी हुई कि पाप से मिलता है, बिना पाप किए तो कुछ मिलने वाला है नहीं। समझ गया आपके? और अब तो वो पाप को हमने बिल्कुल धर्म ही मान लिया, कर्तव्य में शामिल हो गया, कोई एक नंबर दो नंबर सब बराबर सब चलता है ना, ये सब पुण्य ही होगा। तो इससे मिलता है इतने लाखों करोड़ों रुपया या किसी पुण्य से? है भरोसा आपको? बोलो। कोई भी हरेक अपने छाती पे हाथ रख के मन में ही जवाब दे लेना, मेरे से बोलना मन, आप भी ऐसा ही मानते हो कि मिलता तो असलियत में पाप ही से है, लेकिन मंदिर में पंडित जी के सामने ऐसा कहना पड़ता है कि पुण्य से मिला है? तो इनमें भी जो हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें वो पुण्य के उदय से संयोग मिलते हैं। सुनना, और जो प्रतिकूलता प्रदान करें वो पाप के उदय से मिलते हैं। तो फिर आप कहोगे ये बिछुड़ते काहे से हैं। अपन क्या मानते थे, पुण्य से मिलते हैं और पाप से बिछुड़ते हैं। क्यों? अब पुण्य से और पाप से दोनों से तो मिलते ही मिलते हैं, एक से अनुकूल संयोग और एक से प्रतिकूल संयोग। तो अब बिछुड़ने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो बिछुड़ते हैं पुण्य और पाप के खलास होने से। अब तुम्हारा पुण्य खलास हो जाएगा तो चला जाएगा सब। अब बोलो हमारे दिमाग में क्या है? दो बातें कही मैंने, एक तो हमारी श्रद्धा यही है कि पाप से मिलते हैं, क्योंकि हम यदि पुण्य की श्रद्धा होती तो बिल्कुल ईमानदारी से हम अपने धन की कमाई करते। कि पंडित जी वो बातें पुरानी हो गई जो ईमानदारी से कमाई करने की कोई करता होगा कभी। अब आज के तो गवर्नमेंट के रूल ऐसे बन गए हैं कि गवर्नमेंट ही हमें चोरी करना सिखाती है। एक सही घटना मैं आपको बताता हूँ एक मिनट में। मैं कलकत्ता गया था, एक खेमचंद भाई पंडित जी का नाम तो सुना होगा आपने, उनके जमाई थे, कलकत्ता में रहते थे। वो शुद्ध खादी के कपड़े पहनते थे, गांधी भगत थे और बहुत ईमानदारी से अपना बिजनेस धंधा करते थे। उनने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि हमें पूरा हिसाब किताब सही बना करके ले गया इनकम टैक्स वाले के पास। तो उसने 1,00,000 के नीचे ऊपर से सब बात करके, तुम्हें ऐसा बनाने की क्या जरूरत है, वो कौन इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर नहीं, बड़ा अधिकारी ऊपर का। मैं बताता हूँ, मैं एक मुनीम देता हूँ आपको, वो तो पूरी नई की रोकड़ आपको बना देगा, इसे फेंको। और ये पैसा नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। सुन रही क्या बात कर रहे हैं आप, हम सही बना के लगा रही हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सही नहीं बनाया जाता है, जो मैं बताता हूँ वैसा बनाओ। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों साहब क्यों? तो बोले कि ये बताओ कि अभी मुझे आपको 25,000 रुपया देना पड़ेंगे, तो क्या रोकड़ में लिख के दोगे? कि साहब को घूस में 25,000 रुपये दिए, कहां से देंगे बताओ। अब मैं बता रहा हूँ तुम 1,00,000 रुपये बचाओ और 25,000 मुझे दो, 75,000 तुम ले जाओ। बोले मैं दंग रह गया, ऊपर से नीचे देखता रहेगा कि कौन से हाथ जोड़ लिए कि साहब मैं धंधे ही बंद कर दूंगा कल से, जो कुछ भी है उसे मैं अपनी जिंदगी बताऊंगा, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि आज के जमाना तो ऐसा है, वो आदमी तो कोई बाजार में तो खड़ा रह ही नहीं सकता, पाप करना ही पड़ता है और उससे ही कमाई होती है। तो यही श्रद्धा हो गई ना, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धा तो ये है कि पाप से कमाई होती है, तो पुण्य का बहाना क्यों लेते हो? यदि तुम्हें ये भरोसा होता कि पुण्य से कमाई होती है तो पुण्य करने का भाव आता ना, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। धर्म तो बहुत दूर की बात है और पाप की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। तो एक बात तो मैंने आपसे ये कही और दूसरी बात ये कही कि मिलता संयोग है पुण्य पाप से ही है, लेकिन अनुकूल जो बाह्य संयोग हैं, जो हमें अनुकूलता प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, मतलब शांति से हम आत्मा आराधना कर सकें, वो बिल्कुल पुण्य से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रतिकूल संयोग, जो रुपया पैसा, जो स्त्री पुत्र आदि हमें निरंतर प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, एक मिनट शांति से चैन से नहीं रहने देते हैं, वो हमें कोई भी पुण्य से नहीं मिला है, वे सब पाप के उदय से मिले हैं। अंदर समझे ना? तो जो हमारी ये धारणा थी, तो हमने गोमरसार भी ढंग से कहां पढ़ा, कर्म फलौसवी भी ढंग से कहां पढ़ी, हम तो उल्टा ही मान के बैठे हैं कि पुण्य से मिलता है पाप से चला जाता है। और एक बात नहीं, हे पंडित जी, हमारे महापाप के उदय से मेरे बेटे का स्वर्गवास हो गया। क्यों भैया? तेरे पाप करने के उदय से क्यों हुआ? वो बेटे का कोई कर्म वर्म नहीं था, उसका धर्म और उसका कर्म उसके साथ था कि नहीं था, तो उसका भी जो कुछ भी जीवन मरण और सुख दुख भला बुरा होगा वो उसके कर्म के वजह से होगा कि तेरे कर्म के वजह से। हम क्या समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे ही पुण्य पाप से चल रही है, हमारे पुण्य के वजह से हमारे शत्रु का बेटा मर जाता है, क्यों पुण्य के वजह से, हमारे पुण्य पाप के वजह से हमारा बेटा मर जाता है। अरे भाई ये बेटे का भी अपना पुण्य पाप है, शत्रु का भी अपना पुण्य पाप है, ये तो ये नहीं मानता कि मेरा ही, ये तो ये मानता मेरा सारा परिकर आसपास जो भी है वो सब जैसे मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से चलता है, तो ये नहीं है। तो इससे फिर राग द्वेष के अलावा क्या पैदा होगा। वो कहते हैं भाई तेरे जो अनुकूल संयोग बाहर में दिखाई दे रहे हैं वे सब पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, और जो प्रतिकूल संयोग दे रहे हैं वे पाप के उदय से प्राप्त हुए हैं। अब जरा कल्पना करो कि हमारे पुण्य के उदय से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई और 30 वर्ष तक 35 वर्ष तक उस बेटे ने हमारी ऐसी सेवा की, सब तरह से अनुकूलता बरती, क्योंकि हमारे पुण्य का उदय था उससे हमें वो मिला था। अब हमारे बीच में पाप का उदय आ गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्यों उस बेटे को मरना पड़ेगा नहीं, क्या है, एक मिनट में आंख बदल देगा, बहुत दिनों तक तुम्हारी सेवा करी, अब हम हमारे बस की नहीं है, अपने आप करो जो कुछ करता है कर, एक मिनट में आंख बदल दे तो क्या करोगे आप। वो था ना अपने कंधों पर लेके चलता था श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के कराते कराते। अब कई लोग कहते हैं, भिंड वाले कहते हैं, कोई मेरठ वाले भी कहते हैं, और अपने बुंदेलखंड में भी कई जगह वाले कहते हैं कि जब वो यहां आया तो उसने वो कांवड़ फेंक दी के नहीं मैंने बहुत ढोया तुम्हें, अब मेरे से नहीं ढोता। अब अंधे माँ बाप वहां जंगल में पड़ रहे, क्या करें, बहुत कहा बेटा अभी हमको किसी गांव में छोड़ दे, ऐसा कर दे, यहां जंगल में कहां छोड़, नहीं मेरे मन तुम्हारे ढो ढो के मर गया मैं, और वैसा है और वैसा पांच बदल गई। तब उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े तो थोड़ी दया आई, तो उन्हें लेकर के और एक गांव के वहां से बाहर गया, 2-3 किलोमीटर गांव में किसी में पहुंचा तो बोले भैया छोड़ दे अब हमें इधर, कह नहीं कोई नहीं, नहीं मैं बहुत बड़ी गलती हो गई और माफी मांगने लग गया, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया इसलिए माफी मांगता हूं। कि क्या हुआ, तो वो लोग तो ऐसा बताते हैं कि यहां की मिट्टी में ऐसा है, यहां की मिट्टी पे जो पैर रखेगा वो कोई को नहीं गिनेगा, ना मां को ना बाप को। तो जब वो वहां पर उसने फेंक दिया था तो बुड्ढे बुड्ढी ने वहां की मिट्टी उठाकर रेत और अपनी उसमें बांध ली थी थोड़ी काय में चद्दर में, तो फिर बोला बेटा तेरा कोई गलती नहीं है, वो तो मिट्टी का कसूर है, उस पर पैर पड़ते ही ऐसे भाव हो जाते हैं कि तेरे को विश्वास नहीं हो तो ले, और उसने वो मिट्टी वहां रख दी, इस पर पैर रख, उस पर पैर रख दी, फिर गालियां बचने लग गया। वो लोग तो सिर्फ निमित्त की महिमा बताने वाली बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई मिट्टी फिट्टी नहीं है कि वो तुम्हारे भावों को इस तरह से पलट दे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पाप का उदय आएगा तो उस बेटे के मरने की क्या जरूरत है, बिना मरे ही वो आपके प्रतिकूल हो जाएगा, समझ गए ना आप। ये बेटा पाप के उदय से जब वो पैदा हुआ था, कौन कुणिक श्री सैनिक की, तो तब थोड़ी उसने ऐसी बात थी, वो तो जब वो ऐसी औरंगजेब जब पैदा हुआ था तब थोड़ी बात थी, वो तो जब उसे डर लगा कि मेरे दूसरे भाई को राज दे देगा तब उसने अपने बाप के साथ ऐसा किया, तो उन्हें बदलते क्या देर लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पुण्य पाप का भी हम सही स्वरूप नहीं समझते। अब एक बात मैं आपसे कल कह रहा था कि आपके मान लीजिए पुण्य के उदय से और 50 गाड़ियां 50 बंगले, एक एक बंगले में 6-6 बेडरूम, तो आप कितना भोगते हैं, 10 बंगलों में एक साथ रह सकते हैं, क्यों हमने एक यहां बना लिया, एक देवलाली में बना लिया, एक दीवानगंज में बना लिया, एक जयपुर में बना लिया, एक शिखर जी में, एक गिरनार जी में। जब यहां आएंगे दो चार दिन रुकेंगे क्यों, तब यहां ठहरेंगे। बना लेते कि नहीं बना लेते? हम सब सेठियों के हर बंगले तीर्थों पर बंगले रहते हैं। अब सेठ जी इतनी कमाई होती जब तो बंगले बनाते हैं ना, उससे फुर्सत ही नहीं है तो कहीं जाते ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी भर भी वहां नहीं जाए। मैं सच्ची घटना कहता हूं इस शास्त्र की गद्दी पे। हमारे यहां भी बहुत से लोगों ने फ्लैट बनाए थे तो हमने मेहनत कर करके खरीद के उन्हें फ्लैट बना के दिए। एक पैसा संस्था को भी मुनाफा नहीं लिया, क्योंकि यहां आके जे तत्व का लाभ लेंगे, महीना दो महीना रहेंगे और प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उनमें 25% ऐसे निकले कि उनने सारी जिंदगी उस अपने कमरे को देखा ही नहीं। बोलो क्या करें? पता ही नहीं है उन्हें कि हमारा एक शिखर जी में भी बंगला है, हमारा एक यहां एक वहां है, वहां जाएंगे ही नहीं जिंदगी में। और सब जगह बना बना के रखते जाते कि नहीं रखते जाते? तो उपयोग तो एक का ही करेंगे ना। अब एक में 6 बेडरूम है तो कितने बेडरूम में सोएंगे? एक में 5 बेडरूम बंदे ही रहने वाले हैं, लेकिन उनका खर्चा मर्चा जो होगा उनको अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान आ गया तो गंदा फंदा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारहमासी अप टू डेट रखना पड़ेगा है? कभी कभी 2 बेडरूम उपयोग में आ जाएंगे। कब? तब आ जाएंगे भाई साहब, जब इन पति पत्नी की लड़ाई होगी और झगड़ा हो जाएगा तब। अब मैं कहता हूं जितना हमें भोगने को चाहिए हमारे पास उतना ही है, तो अच्छा कौन? क्योंकि हमको जितना मान लो उपयोग में आ रहा उतना ही पाप बन रहा, ज्यादा तो नहीं बन रहा कम से कम। और वो जो जिसके इतना इतना बढ़ता गया है, 10 गाड़ियां खड़ी हैं, बैठोगे तो एक ही में, 10 ड्राइवर, 10 गाड़ियां, पेट्रोल भरा हुआ, उनका जो टैक्स मैक्स लगता है ना, रोड टैक्स, वो सब भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? वो खड़ी खड़ी गाड़ियों का है तो खर्चा सब माथे पर, और उपयोग में कमा रहे। तो पुण्य पाप का एक दफे सही स्वरूप भी हम समझ लें।